तकरीबन चार दिन से महाराज का हमें सत्संग मिल रहा है और जब तक प्रभु महाराज कल जा रहे हैं,
हाँ कल
तो महाराज कल हमसे विदा ले रहे हैं और वापस 17 तारीख को आएंगे। और आप में से काफी भक्तजनों ने इस सत्संग का लाभ उठाया है और महाराज का परिसर आप सब जान चुके हैं और हमारे सबके ये हो भाग्य है। खास तौर से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जैसे इस घर के अंदर बहुत से संत आ चुके हैं और हमें कल्पना भी ऐसी नहीं थी कि नारायण महाराज का हमें इस तरह सत्संग मिलेगा और हमारे घर में उनकी पधराई होगी, तो हमें सपने में कभी सोचा भी नहीं था। मैं जब महाराज से देख रहा हूँ तो ऐसा भास होता है जैसे मैं प्रभुपाद स्वामी को ही देख रहा हूँ, क्योंकि आज तक प्रभुपाद स्वामी की किताबें पढ़कर जो कुछ ज्ञान मिला है वो ज्ञान से दिमाग के अंदर एक ऐसी छवि छा गई है। तो आज ऐसा भाव लग रहा है महाराज को चार दिन से देखने से हम स्वयं प्रभुपाद स्वामी के दर्शन कर रहे हैं। और ऐसे ही प्रभुपाद स्वामी और नारायण महाराज के बीच में हमें तो कोई भेद लगता ही नहीं है। जैसे प्रभुपाद स्वामी चले गए और उनकी दूसरी तस्वीर महाराज के अंदर रख के छोड़ गए, बस यही हमारा सौभाग्य है। महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ व्रत वचन हमें कहे। हरे कृष्ण।
By 1966, and at that time I didn't know that just a year earlier, back in Vrindavan, he and Srila Narayan Maharaj were actually jointly together in meetings planning the ISKCON movement as it manifested itself in Srila Prabhupada's time. They would sit together in the Radha Damodar temple, cook chapatis together. That's when Prabhupada was not famous. Many of us come to Prabhupada because we hear how great he is. But at that time, he was very poor and no one knew of him. He was going back and forth to Delhi printing his first canto, Srimad Bhagavatam. And at that time, Srila Narayan Maharaj was serving him and sent him off to America. After their years of association since 1946, that is, for the last 50 years, Srila Narayan Maharaj has been serving Srila Prabhupada as his senior Shiksha disciple. So when I was in 26 Second Avenue, I didn't know also that my oldest godbrother was Srila Narayan Maharaj. We know from received from Srila Yadunandanacharya, his diksha was completed by Srila Rupa Goswami. No competition, but completed and enriched. And this is the function and duty of the Shiksha Guru, to complete the diksha of the disciple, whether it's his own diksha disciple or the disciple of the bona fide Diksha Guru. So it's taken us all many billions of births to come to this house of Madhavananda Prabhu, and we're all very, very lucky. Hare Krishna.
Our ISKCON, the Srimad Bhagavatam and all other books, and you have seen all the paintings which is painted by Edurani Devi Dasi, who just, you know, mentioned building about the Prabhupada Association. So it is very nice that is the how many painting actually?
Couple of hundred.
Almost all the ISKCON books, whatever you see the painting, all done by her.
Now more than that.
More than that.
After the year.
बाल कृष्ण का पहले बनाया हमारे साथ में रहने पर उन्होंने राधा और कृष्ण की एक ऐसी छवि प्रस्तुत की जो वेणु गीत है श्रीमद् भागवत में, शायद यहां पर नहीं है। और एक है सेवा कुंज का बहुत ही सुंदर चित्र जिसमें जगत के सभी लोग कृष्ण की आराधना करते हैं और कृष्ण राधा जी की आराधना कर रहे हैं ये दिखलाया है। कृष्ण उनके चरणों में मस्तक रखने जा रहे हैं और राधा जी मत हमारे तरफ में आओ, हमारे चरणों को मत छुओ, तो मंत्र और बाहर में काला है। कृष्ण अपनी बांसुरी भी इतनी जो प्रिय है उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं और ललिता विशाखा उनको चमर और व्यजन ढुला रही हैं, रूप मंजरी प्रति सखियां उनकी सेवा कर रही हैं और कृष्ण को वो भी नहीं आने देती। यह सब मेरे हृदय की बातें, इनको मैंने कहा जैसे इसको जगत में प्रकाश करो। तो करीब करीब 5-6 महीने में उस चित्र को बनाया, वो जगत में सबसे प्रसिद्ध इनका हुआ, इसलिए उनका नाम विश्व में और बढ़ गया। वेणु गीत कृष्ण वेणु बजा रहे हैं और गोपियां घरों में बैठी हुई मतवाली होकर के भाव विबुद्ध होकर के सुन रही हैं और कह रही हैं जैसे हम तो कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर सके, मर करके हिरणी बनेंगी, मर करके हम बादल मेघ बनेंगी जो कृष्ण की सेवा करेंगी, इत्यादि सब प्रकार से। तो उसी का उन्होंने भी चित्रण और चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का भी एक बहुत सुंदर चित्र उन्होंने, कीर्तन कर रहे हैं चले जा रहे हैं, द्वैताचार्य इत्यादि पीछे से उनके चल रहे हैं, एक और भी बहुत सुंदर चित्र किया है। मैं समझता हूं कि और भी भजन के जो भाव जो रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी के हृदय में थे इनको बतलाने से उसको भी प्रस्तुत करेंगे, ये भजन में भी सहायक होता है। महाप्रभु के संप्रदाय में जो आए हैं वो महाविष्णु की सेवा करने के लिए नहीं, नारायण की सेवा करने के लिए नहीं, द्वारकाधीश की भी सेवा करने के लिए भी नहीं, मथुराधीश की भी सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि रूप गोस्वामी के भावों के अनुसार में राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए आए हैं, नहीं तो वो उसी संप्रदाय में जाएंगे, दूसरी संघ में जाएंगे। स्वामी जी ने इसको उपदेशामृत नामक एक रूप गोस्वामी के ग्रंथ में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत उसकी व्याख्या में लिखा है। हम लोग की जो रेगुलेटिव भक्ति है, रेगुलेटिव माने होता है वैदिक भक्ति, इसकी धारा रुद्ध होती है। रेगुलेटिव भक्ति की इसलिए कि हम लोग स्पॉन्टेनियस कृष्ण की जो भक्ति है, निरंतर बहने वाली प्रेममयी जो भक्ति है, ब्रज प्रेम की जो सरिता है, उसमें अवगाहन करने के लिए हम लोग आए हैं। प्रारंभ में रेगुलेटिव भक्ति को, वैदिक भक्ति को हम लोग आश्रय करते हैं, किंतु हमारा उद्देश्य उसी तक रह जाना नहीं है। नदी की धारा रुद्ध हो जाने पर नदी का पानी सड़ जाएगा, उसकी धारा चलनी चाहिए, तो भक्ति की धारा रुकती नहीं है, प्रेम का प्रवाह निरंतर सतत चलता रहता है। इसलिए स्वामी जी आए थे, महाप्रभु जो चीज देने के लिए आए वो ये भी वही चीज देने के लिए आए थे, उससे तनिक कम नहीं। रूप गोस्वामी नहीं होते, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं होते, महाप्रभु को कौन जानता जे ये स्वयं कृष्ण ही राधा जी का भाव लेकर के आए हैं। कृष्ण से भी महाप्रभु जी का वैशिष्ट्य अधिक है, ये कौन जानता है। तो ये महापुरुष लोग नहीं होते तो हम लोग कैसे जानते, इसलिए ये भी उसी चीज के लिए आए थे, उससे नीचे कक्ष कम देने के लिए नहीं। जगत में कृष्ण नाम का जो प्रचार किया हम जिसको देखते हैं ये उनका महान कार्य उतना नहीं है, इससे भी महान कार्य है कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको देना। प्रेम कीर्तन मान लिखी आदमी करता है और वह कृष्ण के प्रति उनका प्रेम नहीं है तो उस कीर्तन का मतलब क्या रहा। यदि वो धारा बंद नहीं तो कीर्तन करते 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 हजारों लोग जो स्वामी जी के जाने के बाद में उनकी धारा रुद्ध हो गई तो वो संन्यास भी छोड़ दिया, क्यों, ये भी एक प्रश्न है, क्यों छोड़ करके चले गए, इतनी सेवा किया लाखों करोड़ रुपए ले आए क्यों छोड़ दिया, क्योंकि धारा वो आगे नहीं बढ़ी, निराश होकर के नीचे गिर गए। जब तक प्रेम भक्ति का अनुभव नहीं होगा, यशोदा जी जैसा कृष्ण के प्रति बात सल्य स्नेह, गोपियों का कृष्ण के प्रति यदि मधुर भाव है, उसमें रसास्वादन नाम करते हुए नहीं आएगा तो वो छोड़ने के लिए बाध्य है, चले जाएंगे। इसलिए वो सब चले जा रहे हैं नीचे, कहते हैं कि अब वैदिक भक्ति के ऊपर में, वैदिक भक्ति भी तो नहीं। इसलिए प्रभु जी ने, इनके गुरु जी ने, हमारे गुरु भाई और शिक्षा गुरु, इनके द्वारा बहुत से काम कर रहे हैं। एक चीज समझना चाहिए, तब मैं अपना प्रवचन आरंभ करूंगा। इस्कॉन कोई नई चीज नहीं है। इस्कॉन नाम अंग्रेजी में एक नया नाम है, इसका नाम है विश्व वैष्णव राज्यसभा, जो ब्रह्मा से चली आ रही है धारा। नई धारा नहीं, नई होगी तो फिर उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। जिसका जन्म है ना, उसका मरण भी है। तो जो चीज नई आरंभ होगी तो उसका विनाश भी संभव है। तो यदि नई कौन चीज नई है तो दो चार वर्षों में, 150 वर्षों में वो समाप्त हो जाएगी। स्वामी जी इस चीज के लिए नहीं आए थे। ये कृष्ण प्रेम की एक धारा है, नाम थोड़ा सा इधर उधर हो जाए कोई भी बात नहीं। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा इस जगत में स्थापित है ये। रूप गोस्वामी इत्यादि के समय में, चैतन्य महाप्रभु के बाद में, जी गोस्वामी ने विश्व वैष्णव राज्यसभा की स्थापना की। एक धारा होनी चाहिए, विश्व वैष्णव राज्यसभा, जो कृष्ण प्रेम को देने वाली है। उसका मूल उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को देना, जो ब्रह्मा करते आए हैं, नारद जी करते आए हैं, वेद व्यास ने किया भी, जो बतलाया वेद व्यास समस्त कुछ देने के बाद भी सुखी नहीं रहे। क्यों? ब्रजवासियों जैसा प्रेम की बात नहीं लिखी। कृष्ण भी किसी के चरण में गिर सकते हैं, किसी की आराधना कर सकते हैं, कोई उनको बांध सकता है। पहले भागवत के बाद पहले किसी भी शास्त्र में नहीं था। अपने प्रेम के द्वारा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है जो कृष्ण सर्वशक्तिमान है, उनको अपने प्रेम के रज्जू से उसको बांध सकती है कोई, ये गोपियां बांध सकती है, यशोदा मैया बांध सकती है, उनसे भी अधिक राधा इत्यादि गोपियां उनको बांध देती हैं। उनको रस्सी की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने प्रेम रूपी स्नेह के डोर से उनको ऐसे बांध देती है कि टस से मस नहीं कर सकते। ये धारा है प्रेम देने के लिए, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जो धारा है उसका पहला नाम कृष्ण प्रेम देने वाली धारा, संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। उसी को जीव गोस्वामी ने उसका नाम रखते हुए भी उसका नाम रखा विश्व वैष्णव। उसके बाद में ये चलती आई, आते आते उसकी एक शाखा हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के योग्य पात्र शिष्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी जी यहां पर है, उसकी एक शाखा प्रशाखा, एक डाल, और सारे विश्व को डुबा दिया। देना चाहते थे कृष्ण प्रेम, कुछ कुछ लोगों को दिया भी, किंतु जंगल काटने में समय आया। एक ड्रिंक एज बी मेरी, ये जंगल है, ऐसे विचार। मुक्ति की कामना, देवताओं की उपासना, उसके द्वारा संसारी सब लाभ होता, उसमें संसारिक सुख, और फिर आदमी मर जाएगा, खत्म। उसमें कोई सुख नहीं है। हम भगवान के पार्ट हैं, पार्ट पार्सल हैं, उनके अंश हैं। जब तक भगवान की सेवा को प्राप्त नहीं करते तब तक सुखी नहीं रह सकते। इसलिए सभी आचार्यों ने इस काम को किया है, स्वामी जी ने यही काम किया, किंतु थोड़ा सा जंगल इधर में अधिक, उसको काटने में समय लग गया, किंतु अपने ग्रंथों में उभर करके रखा। जब ये हमारा बेटा अभी 2 वर्ष का है, 1 वर्ष का है, जब ये प्राउड मेच्योर हो जाएंगे तो हमारी संपत्ति के अधिकारी बने, इसलिए ग्रंथों में रख दिया। कोई यदि कहे जैसे उनके ग्रंथ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सब कुछ तो भर दिया, अच्छा तो ब्यास जी ने भी तो भर दिया था, तो फिर और हमारे रूप गोस्वामी ने क्यों ग्रंथ लिखा? जगदगुरु गोस्वामी ने सब कुछ दे दिया था तो जी गोस्वामी ने इतना ग्रंथ क्यों लिखा? यदि जी गोस्वामी ने सब कुछ दे दिया उसके अंदर में है सभी कुछ ठीक है, उसके बाद में हमारे भक्त विनोद ठाकुर ने सैकड़ों ग्रंथ किस लिए लिखे? और यदि इन लोगों ने लिखा तो स्वामी जी ने क्यों लिखा? और स्वामी जी के जाने के बाद अब क्यों ग्रंथ हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? अब होंगे नहीं ग्रंथ? होंगे, कुछ न कुछ उच्छिष्ट रख जाते हैं महात्मा लोग, उसको प्रकाश करने के लिए। प्रेम कैसा है, नित्य नवीन है, कितना वर्णन करेंगे प्रेम के, लाख वर्णन करने पर भी पूरा नहीं होता। कृष्ण का चरित्र नव नव आयमान है, नए से नए होता जाता है। एक गोपी ने कृष्ण को देखा, वो गोपी राधा जी, कहें कि ये कौन है जो आ रहा है? ललिता जी ने कहा तो नहीं जानती, तो मैंने कभी देखा ही नहीं, देखा नहीं। अरे अभी अभी तो उसकी गोदी से उतर करके आ रही है और उसको देखा नहीं, तो मैंने कभी नहीं देखा, देखते ही रहा। ये नित्य नवायमान चीज है ना, तो उस प्रेम को भी तो वर्णन करना भी तो नित्य नवाय नवायमान होगा, नए नए रूप से, कभी पुराना नहीं होता। ये चीज इन इन चीजों को समझना चाहिए। इसलिए भक्ति केवल इस्कोन नामक जो संस्था है उसी में ही नहीं है, कोई यदि समझे तो ये गलत है। इसी का प्रतिरोध करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी आए और बोले, जो लोग ये समझते हैं कि भारतवर्ष में हम ब्राह्मण कुल में आए हैं और हम ब्राह्मण हैं, यह गलत है। ब्राह्मण वंश में होकर के ब्राह्मण का काम नहीं करते, ब्रह्म की अनुभूति नहीं है, कृष्ण का भजन नहीं करते, तो ब्राह्मण शूद्र और चमार से भी गया बीता है। समझ रहे हैं इस चीज को? ब्राह्मण कुल में आने से नहीं होगा। वृंदावन में गोस्वामी लोग हैं, नवदीप में गोस्वामी लोग हैं, कालना में गोस्वामी लोग हैं, जो गोस्वामियों के वंश में आए, केवल वही भजन करेंगे और दूसरा नहीं करेगा, सब नीच है ऐसा मत समझो। प्रभुपाद ने इसका विरोध किया, जो लोग गोस्वामियों के वंश में होने पर भी भजन नहीं करते और भजन की अनुभूति जिनमें नहीं है, कृष्ण प्रेम नहीं है, तो एकदम गया पिता गधे से भी अधिक है। और दूसरे कुल में भी भगवान का हरिदास ठाकुर जैसे लोग भगवान का भजन करते हैं तो ये लोग कैसे हैं? सर्वोत्तम है। विदुर शूद्र जाति के, नारद जी शूद्र जाति में, व्यास जी कौन कुल में है? अंत्यज हैं। क्यों? पराशर जैसे ऋषि एक किसी की लड़की के साथ में उनको कुमारी अवस्था में पैदा, ये कौन सी जाति होगी? खबरदार, किंतु ऐसा मत सोचो, वैष्णव की कोई जाति नहीं होती, भक्तों की कोई जाति नहीं होती, कहीं से भी उत्पन्न होकर के संसार में सबसे बड़े रह सकते हैं। इसलिए इसी संस्था में यदि कोई संस्था में भगवान का भजन ना करे और ये सोचे कि मैं सबसे बड़ा हूं, तो यह सबसे बड़ी गलती है, इसलिए अधोपतन। भक्ति कंट्रोल की चीज नहीं है, यह प्रेम की चीज है। महाप्रभु जी प्रेम से, हा कृष्ण कहां, कृष्ण कहां, हा प्रचंड नंदन कहते हुए चले जा रहे हैं, और मृग पशु पक्षी सिंह बाघ भालू उनके पीछे पीछे कृष्ण कृष्ण कहते हुए चल रहे हैं। ये तो प्रेम है ना, कहीं द्वेष उसमें नहीं रहता, किसी के प्रति निंदा का भाव नहीं रहता, ये प्रेम है। प्रेम से सर्वस्व जगत को जीता जा सकता है। महाप्रभु यही प्रेम देने के लिए आए थे, स्वामी जी को यही प्रेम देने के लिए आए थे, कोई भी अंतर नहीं। किंतु वह प्रेम यदि किसी में नहीं है और कहता है मैं उनका बेटा हूं, जैसे स्वामी जी के लड़के कह रहे थे जो इनके समस्त संपत्ति का हम लोग उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि मैं उनका बेटा हूं, तो वैसे कोई उनसे दीक्षा लेकर के और भजन नहीं करता है, विषयों में फंसा रहता है, और वो कहे जिससे मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, यह गलत बात है। कोई भी भगवान का भजन करने वाला हो, हरि का भजन जो करता है, हरि को भजे सो हरि जन होगी। हरि का भजन करने वाला भगवान का प्यारा है, किसी वंश और कुल का ये उत्तराधिकार की भक्ति चीज नहीं है। जैसे इसी को ही हो, इसी वंश में ही भक्ति होती चली जाएगी, तो फिर जब वंशियों का ध्वंस क्यों हो गया, कृष्ण कुल में तो आए थे। प्रहलाद महाराज जी तो असुर बालक होकर के आए, तो उनको भक्ति जगत के पूज्य कैसे बन गए। अरे सुग्रीव जी तो और हनुमान जी तो बंदर और भालू, इनको भक्ति कैसे मिल गई। अरे सबरी तो कहां जहन्नम की जाति, वन जंगल में फिलनी जाति। और राम सब ब्राह्मणों को छोड़कर के, ब्रह्म ऋषियों को छोड़कर के उसके घर में पधार कर उसके जूठे देर को खाया। क्यों क्यों खाया, जहां पर प्रेम है वहीं पर, जहां प्रेम नहीं है उसका कुछ भी ग्रहण नहीं करते, चाहे वो जिस कुल में आया हो। कुल से मतलब नहीं है भक्ति का, किसी संप्रदाय से कोई खास मतलब नहीं है। यदि संप्रदाय में रहते उसके आचार विचार को नहीं पालन करते हैं तो फिर मतलब क्या था। संप्रदाय का तात्पर्य कि उस विचार को हम ग्रहण करते हैं, जहां ये नहीं है वहां पर भक्ति का भक्ति नहीं है। और जहां पर ये चीजें हैं कहीं भी ये हो सकता है, वैष्णव की कृपा गुरु की कृपा से ही हो सकता है। अभी ये बतला रही थी सनातन गोस्वामी जी के दीक्षा गुरु कौन है, कोई बतला सकता है कौन है दीक्षा गुरु। कहीं लिखा ही नहीं। हरिदास ठाकुर के दीक्षा गुरु कौन थे जो महाप्रभु उनको नामाचार्य बना दिया, नहीं। इसलिए जिनके विचारों को ग्रहण करके मनुष्य भगवान के प्रेम को पाता है वही गुरु यथार्थ है। अरसमन जिनके विचारों को आदर्शों को ग्रहण करके आदमी प्रेरणा प्राप्त होकर के भगवान की तरफ में अग्रसर हो जाता है वही यथार्थ पुरुष का गुरु है। हमारे रघुनाथ ये कृष्णदास कविराज जी का गुरु कौन था, कहीं लिखा है। उन्होंने पहले ही प्रणाम किया ए छह गुरु जे शिक्षा गुरु जी हमार, ये छह हमारे शिक्षा गुरु हैं। कौन, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, गुरु का नाम ही लिखा। ठीक, रूप गोस्वामी उनके गुरु है, रघुनाथ दास गोस्वामी उनके गुरु हैं। रूप रघुनाथ पदे चार आस चैतन्य चैतम्बट कहे कृष्णदास, उनके आदर्शों को लेकर के ग्रहण किया और वैसा ही भजन किया वही गुरु है। जिसके विचारों को हृदय के भावों को लेकर के हम भजन करते हैं, अनुप्राणित होते हैं, हमको शिक्षा मिलती है और हृदय से उसको ग्रहण कर लेते हैं वही यथार्थ गुरु है। और जो शिष्य होने पर भी मंत्र ले लिया और उनसे कोई संबंध नहीं, भजन नहीं करता, कुछ नहीं करता, विषय में फंसा, रूपे में आसक्त, माया मोह में आसक्त, वो गुरु कैसे होगा। वो शिष्य नहीं, शिष्य वही है जिनके भावों को ग्रहण करता है। यही शिष्य दो प्रकार का, एक दीक्षा और एक शिक्षा, दोनों बराबर। कहीं कहीं शिक्षा गुरु उन्नत, कहीं कहीं दीक्षा गुरु उन्नत, भावों के ऊपर में है। जैसे हमारे गुरु हैं ओम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पार्षद भक्ति पर ज्ञान के सवर्ष, और रूप गोस्वामी को हमने शिक्षा गुरु माना, कृष्ण को शिक्षा गुरु माना, चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा गुरु माना, तो शिक्षा गुरु बढ़ा हुआ ना दीक्षा गुरु, आ रहा है समझ में। हमने शिक्षा गुरु बनाया है कृष्ण को, राधा जी को शिक्षा गुरु बनाया, और शिक्षा गुरु बनाया रूप गोस्वामी को, और हमने गुरु मंत्र दिया दीक्षा गुरु से। अब बतलाइए तो कौन श्रेष्ठ है, कृष्ण श्रेष्ठ है कि हमारे गुरु जी है। किंतु हम इनके प्रति इसलिए हैं, हम कृतज्ञ हैं कि इन्होंने हमारा चोटी पकड़ करके बहिर्मुख जगत में घूम रहा था, कृष्ण के चरणों का रस स्वादन कराया, इस हम इनके चिरऋणी रहेंगे। इसलिए भगवान और शिक्षा गुरु भी रहने पर हम अपने दीक्षा गुरु को प्रणाम करके तब फिर उनको करेंगे। किंतु हम जानते हैं कि दीक्षा गुरु से भी वो रूप गोस्वामी बहुत हमारे गुरु जी के 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 गुरु रूप गोस्वामी है, इस रूप में हम समझेंगे। यह समझना अपराध नहीं है। यदि भक्ति का किसी से संबंध नहीं है, चाहे जो कोई हो, खास कृष्ण का बेटा भी है, महाप्रभु का कोई खास आदमी भी है, कोई भी भक्ति से संबंध यदि है
भक्त साथ, उसके साथ में संबंध है, ये विचार भक्ति का है।
इसलिए प्रभुपाद के आने के बाद में जब प्रचार आरंभ किया, उनसे जान से मारने के लिए बहुत से षड्यंत्र किए गए सिद्ध भक्ति सिद्धांतों से। नवदीप में उनसे जान से मारने के लिए भी, जैसे हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, वहां रोजी रोटी का प्रश्न है। वैष्णव का कोई यदि दूसरा विरोध करता है तो ये समय की रोटी रोजी देखता है वो, जो हमारे जो पाने वाला जो रुपया था वो अब उनके पास में चला जाएगा, हमको कोई नहीं मारेगा। ये बड़ी भारी एक समस्या है, ये भक्ति का विचार नहीं है। तो आज हम कुछ भक्ति के संबंध में दो चार बातें बतलाना चाहता हूं। चैतन्य महाप्रभु के समय में रूप और सनातन जी हुए थे, आते थे। एक समय की बात है कि हुसैन शाह बादशाह अपने एक मीनार, जैसे कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, यहां पर भी टावर है, ऐसे वो बनवा रहा था। वो बनाने वाला मिस्त्री बड़ा कुशल था कारीगर, उन्होंने उसको आदेश दिया कि ऐसा बनाओ टावर कि इसे अच्छा कोई बना ना सके। जो ठीक है, वो बनाना आरंभ किया, टावर बन गया। एक दिन ऊपर में चढ़ा बादशाह और उस मिस्त्री को भी ले गया, उससे कहा भाई तुमने तो टावर तो बहुत ऊंचा बहुत अच्छा बनाया, यहां से पूरा दिल्ली दिखाई पड़ता है। ये हजूर मैं तो इसे भी अच्छा बना सकता था। अच्छा, तुम इतना अच्छा कारीगर है, हाथ के इसका हाथ काट लो और इसको ये तुम्ब से मीनार से इसको फेंक दो नीचे, जो दूसरा कोई बना ही नहीं सके, ये भी नहीं दूसरा बना सके। बस उसको हाथ कटवा दिए और वहीं से ऊपर से फेंक दिया और वो मर गया। और उस समय बादशाह क्रोधित था, उसने एक आदमी को बुलाया अपने प्रधान किसी कार्यकर्ता को, जाओ जल्दी से बुला करके लाओ। वो सुन करके थर थर कांपता हुआ वहां से चला, क्या करें, क्या से क्या, किसको बुलाना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आया। वो नगर छोड़ करके भाग गया और जहां पर रूप सनातन थे उसी नगर में चला गया प्राण बचाने के लिए, हमको तो पता नहीं। रूप सनातन जो समय छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बुला करके एक दिन देखा, बड़े दुखी हैं, भाई किसलिए तुम लोग दुखी है, क्या बात है, क्या क्या करें महाराज हजू, तुम लोग छोटे बच्चे हो। बादशाह ने हमको कहा जी जल्दी बुला लाओ, और यदि बुला करके नहीं किसी को ले जाता है जिसको बादशाह चाहता है तो हमारा गला काट देगा, इसलिए डर के मारे हम भाग करके शरण लेकर के यहां पर छिपे हुए हैं। बादशाह उस समय क्या कर रहा था, ऊंची मीनार पर खड़ा था, क्या कर रहा था, तो मीनार को देख रहा था और जो बनाने वाला था उसको उसने मरवा दिया। बस मीनार का काम पूरा हो गया, थोड़ा सा बाकी है, ओ जाओ यहां पर बहुत मिस्त्री अच्छे अच्छे हैं, यहां से अच्छे अच्छे मिस्त्रियों को लेकर के जाओ और उस काम को कंप्लीट करा देना। यहां से अच्छे अच्छे चुन करके दो चार मिस्त्री ले गया और वहां पर बादशाह के पास में पहुंचा, हजूर मैं बुला करके ले आया। तो बादशाह हंसने लगा, तुम कैसे लाया, क्या ले आया, तो मैं राजमिस्त्री को जो काम करने वाले हैं ईंट इत्यादि के काम करने वाले। तो खुश हो गया था, तो कैसे लाया, तो दो लड़के वहां हैं उस जगह में, उन लोगों ने ऐसा हमको बतलाया जैसे ये बादशाह यही चाहता था, वो उन दोनों को किसी प्रकार से लाया जाए। बस अपने आदमियों को भेज करके इन दोनों को ले आकर के राजमंत्री प्रधानमंत्री उनको प्राइवेट सेक्रेटरी उनको नियुक्त किया। अंत में हुआ क्या, महाप्रभु जबकि वृंदावन जा रहे हैं संन्यास लेने के पश्चात, तो जाना चाहिए था जिस रास्ते से नहीं जाकर के उस रास्ते से आए और वहां पर मिले। उनके साथ में हजारों लाखों आदमी लग गए, भक्त लोग कोई साथ नहीं छोड़े, वृंदावन जाएंगे महाप्रभु जी के साथ। जब वहां पहुंचे तो काफी भीड़, राजा ने हुक्म दिया हुसैन बादशाह ने सनातन अवरूप जी को, जाकर के पता लगाओ कि ये किस लिए आदमी आ रहा है और उसके पीछे इतने आदमी क्यों आ रहे हैं, हमारा राज्य तो नहीं दखल करने आ रहा है या क्या बात है। लोगों ने समझाया कि नहीं वैसा नहीं, ये वृंदावन जा रहे हैं और इनके साथ में भक्त लोग जा रहे हैं, अपना अपना खाते हैं, इनके साथ में जा रहे हैं, वृंदावन की शोभा देखेंगे, कृष्ण का भजन करेंगे। रात में इनसे मिले रूप और सनातन, और जी गोस्वामी छोटा सा बच्चा था उनके चरणों में दे दिया। सनातन गोस्वामी जी बोले आज हमारा जीवन सफल हो गया आपसे मिलकर, आप हमें दर्शन देने के लिए इस रास्ते से आए, नहीं तो आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं थी। सनातन गोस्वामी जी ने कहा आप वृंदावन जब दर्शन करने के लिए, यह वृंदावन दर्शन करने की परिपाटी नहीं है, ये पद्धति नहीं है, जो लाखों लोगों को साथ में लेकर के जा रहे हैं, इनकी व्यवस्था में ही तो आपकी सारी चिंताएं चली जाएंगी, अब भगवान कृष्ण के लीला चिंतन कब करेंगे, समझ रहे हैं। इतने लोगों की हमने मठ किया 10, 15, 20, 50, 100 मठ किया, अच्छा उसकी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। एक एक मठ में हमने 500 गौवे रख दी, काफी संपत्ति है, बाग बगीचे हैं, उसमें स्त्री पुरुष रहते हैं, कभी गड़बड़ करते हैं, कभी उसकी स्त्री को भगा ले जाता है, वो उसकी स्त्री को वो भगा ले जाता है, कभी कुछ कभी पैसे की कमी, इतने गऊओं का पालन कैसे हो, कभी गैया मरने लगती हैं, कभी कुछ, तो दिन भर एक आदमी स्वामी जी इसी की चिंता करते रहे या कहां से पैसा आएगा, लाख रुपया इसकी व्यवस्था की जरूरत कहां से आएगा, ये तो राजा का काम, इसकी व्यवस्था में तो गड़बड़ हो जाएगा, आप इधर चिंता कीजिए आने दीजिए। तो आदमी भजन क्या करेगा, ये आदमी कहां पानी पिएंगे, इनकी छाया कहां होगी, रसोई कहां से होगी, कैसे रहेंगे। अपराध और ये किया, स्वामी जी का पहला भाग, ये दूसरा भाग, उनका ही वो क्या कहते हैं पूरक। अच्छा तो आप लोगों को भी मैं भेजूंगा, अभी जो कुछ दिया लाया था वो तो सनातन गोस्वामी जी बोला जैसे इतने लोगों को जाएंगे तो उनकी चिंता करेंगे ना, कृष्ण की चिंता करेंगे, एक दो आदमी बेशी से बेशी, और भी अपने समजातीय भाव का हो, जो भावों को और वृद्धि करे, और यदि वहां पर दो आदमी लड़ने लगे तो महाप्रभु जी लड़ाई रोकेंगे ना, कृष्ण दर्शन का भाव देगा, इतने लोग खाएंगे कहां, रहेंगे कहां, क्या करेंगे, यही चिंता, इसलिए यहां से लौट जाइए और अकेले जाइए। महाप्रभु ने ये तो बड़ी अच्छी शिक्षा, मैं सचमुच में ये सोच रहा था। उन्होंने कहा जी नहीं, आप हम पर दोनों पर कृपा करने के लिए आए थे, बहाना इस तरह से बनाया आपने, तुम लोग बहुत जल्दी से ये सब छोड़ करके हमारे पास आ जाओ, वृंदावन में तुमको हम स्थान देंगे, जहां पर कृष्ण की लीलाएं हुई थी, रस रस बरस रहा था वहां पर तुम लोग रहना, मनुष्य जन्म को बर्बाद मत करो विषय के भोगों में, बस उन्होंने निश्चित कर लिया अब नहीं। महाप्रभु जी चले आए और इसके बाद में रूप सनातन जी ने, पहले रूप गोस्वामी ने संसार छोड़ा, छोड़ करके और चले आए घर, जो कुछ कमाया था उसका आधा सब लोगों को, ब्राह्मण को, ईद को, इसको दे दिया, जो आधा रह गया उसमें आधा में आधा कर दिया और अपने पारिवारिक जनों में उसको बांट दिया, और जो थोड़ा सा और रह गया उसका भी आधा कर दिया, आधे में जीव गोस्वामी की शिक्षा इत्यादि के लिए परिवार वर्ग को दे दिया, और 10,000 स्वर्ण मुद्रा उनके पास में केवल रह गया और बाकी सब बांट दिया। उसको लेकर के जहां पर कि वो प्रधानमंत्री हैं वहां पर आए और उनको दे दिया, यदि रूप सनातन गोस्वामी को किसी रुपये की चिंता होगी तो इनसे इनकी सहायता हो, और अपने आप वृंदावन में चले आए। सनातन गोस्वामी जी अपराध काज हो नहीं, नवदीप के ब्राह्मण और गुश जो
बहुत उच्च कोटि के जो वैष्णव थे उनको बुला करके भागवत श्रवण करते थे। भागवत का क्लास होता, जैसे आपके घर में क्लास होता है, भागवत का शास्त्रों का क्लास होता है, ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग, रसिक लोग, तत्वज्ञ लोग उसकी सभा में जाते थे और सबका सम्मान करते थे। ये आने जाने का खर्चा टर्चा जो कुछ होता था, सारी व्यवस्थाओं को, उनके भरण पोषण इत्यादि का सारी व्यवस्थाएं वो करते थे सनातन गोस्वामी, और वहां पर निश्चिंत होकर के भागवत। 10 दिन हो गया, गए नहीं राजा के दरबार में, कोई व्यवस्था नहीं थी। राजा ने खबर दिया सनातन गोस्वामी को, जो तो जाओ नहीं तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा। तो कोई आदमी आया तो उन्होंने खबर दिया, भाई कह दो जी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं जा नहीं सकता। तो गया उनसे कहा बादशाह से, उनकी कहते हैं तबीयत खराब है कि नहीं, मैं तो देख रहा था कि वहां पर 10-20 आदमी थे, बड़े बड़े पंडित पगड़ी बंधे हुए और वैष्णव लोग थे, टीका लगाए हुए, गले में तुलसी की माला, और सभी लोग रो रहे हैं, कृष्ण की कथा की चर्चा हो रही है। अच्छा, वो वेश बदल के वो आ गया, सनातन तुम मेरा छोटा भैया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम बीमार कुछ नहीं, राज्य का हमारा चौपट हो गया, प्रबंध हो नहीं रहा, और तुम इसे उदासीन होकर के घर में भागवत बांच रहा है और पढ़ा रहा है, तुम हमारे ऊपर देखो, हम संपूर्ण से तुम पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा जी महाराज मैं सच बात बतलाऊं, अब हमारा इसमें काम में हमारा रुचि नहीं, अब मैं कर नहीं सकता, आप दूसरा कोई प्रधानमंत्री और दूसरी कोई खोज दीजिए। बहुत जीत किया, बसा ने कहा यदि आप हमारी बात ऐसे नहीं मानती हैं तो आपको मानना पड़ेगा दूसरे रूप में, आपको जेल में बंद कर दूंगा और आपको बहुत शास्ति दूंगा, दंड दूंगा यदि हमारा राज्य नहीं देखेंगे, अब आपकी जैसी इच्छा। उन्होंने सोचा राजा मोरे प्रीति करे से मोर बंधन, स्त्री मोरे जे प्रीति करे से मोर बंधन, स्वामी मारे प्रीति करे से मोर बंधन, पुत्र मारे प्रीति करे से मोर बंधन। आ रहा है समझ में? राजा मोरे प्रीति करे से मोर बंधन, राजा मुझे जो प्यार कर रहा है ये प्यार हमारे लिए नहीं कर रहा है, उसके लिए, वो नहीं देखता कि इसका जीवन बर्बाद हो रहा है कि जीवन सुखी होगा कि कैसे, वो तो अपना काम निकालने के लिए हमसे प्यार कर रहा है। स्त्री मुझे प्यार करती है, ठीक है करती है, वो प्यार नहीं मोह है, आसक्ति है। यदि कृष्ण के लिए प्यार करती, जैसे गोपी लोग, गोप लोग अपने गोपियों को प्यार करते थे, ये कृष्ण की प्यारी है। पांडव द्रौपदी को प्यार करते हैं किस लिए? अरे कृष्ण की प्यारी सहेली सखी है, इसलिए। और पांडव लोग द्रौपदी को किस लिए, द्रौपदी पांडवों को किस लिए प्यार करती हैं? अरे अर्जुन के रथ को हांकते हैं, कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण ने अपनी बहन को भी इनके साथ में शादी कर दिया है, इतने प्रेमी लोग हैं, इसलिए कृष्ण के प्रेम को लक्ष्य करके उनका प्रेम है, हमारा जैसा नहीं। सनातन गोस्वामी ये देख रहे हैं, राजा हमारा परमार्थ नहीं देखता है, हमारा परमार्थ जीवन का नष्ट हो रहा है, मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारा परमार्थ नहीं कर सकेंगे। यदि हम बिल्ली, कुत्ते, सुअर, गधे, कुकर होकर के आएंगे तो परमार्थ होगा? परमार्थ के लिए हम क्या करते हैं असल में? परमात्मा के लिए क्या करते हैं? नहीं करते। जिस प्रभु ने हमें जन्म दिया, जिस प्रभु के हम अंश, हमारी ये दुर्दशा हुई है, जो विश्व ब्रह्मांड का हेतु की कृपालु है, सब में बुद्धि वृत्ति देने वाले हैं, हमारा पालन पोषण करता है, यदि आज हमारी पाकस्थली खराब हो जाए तो क्या होगी, क्या होगी? यदि आज हम पागल हो जाए तो, आज यदि कैंसर हो गया हमारे यहां पर तो, हार्ट में हो गया तो कौन बचाएगा? ये समझो ये प्रभु की बड़ी कृपा है, स्वस्थ शरीर से और सुंदर शरीर दिया, जिसमें हम भगवत चिंतन करके अपना परमार्थ चिंतन कर सकते हैं। हम अर्थ चिंतन इसलिए करते हैं कि एक जन्म के लिए सुखी रह सके। अच्छा, उसके बाद वाले का ये अर्थ जाएगा उस जन्म में? आज आप यहां के राष्ट्रपति हैं और जन्म मृत्यु हो जाने के बाद में यहीं पर आपने जन्म ले लिया, वो प्रेजेंट के समय में जो धन संपत्ति ये सब था, बाल बच्चे थे, वो तुम्हारे होंगे नहीं? परमात्मा के लिए हम क्या करते हैं? सनातन गोस्वामी ने सोचा, ये मुझे जो प्यार कर रहा है, इतना बड़ा पदवी दे रहा है, इससे हमारा लाभ क्या होगा? मरने के बाद तो सब छूट जाएगा, इसलिए ये हमारा हानिकारक है। इसलिए सोच करके कहा, जैसे ये बिगड़ जाए तो ऐसा ही काम करना चाहिए, ये बिगड़ जाए। बस राजा बिगड़ गया, कहा जैसे तुम नहीं चलते हो, हम तुम्हें दंड देंगे, जेल में लेकर के बंद कर दिया। जिसको जेलर बनाया था सनातन गोस्वामी ने, जिनके कलम से हुआ था, वो जेलर के अधीन ये कैदी बन गए। वो चला गया युद्ध करने के लिए उड़ीसा में। उन्होंने कहा जैसे तुम हमारे साथ में चलो। उन्होंने कहा जी आप जा रहे हैं राक्षस होकर के उड़ीसा, वहां पर देवभूमि है, जगन्नाथ जी की सेवा होती है, और आप जाएंगे उस सेवा को बिगाड़ने के लिए, मैं उसमें आपके साथ में नहीं जाऊंगा। वो और बिगड़ गए, जेल में बंद कर दिया। कहा जी खटाओ इनको अच्छी तरह से देखना, निगरानी, मैं लौट करके जल्दी से आता हूं। अब वो 10,000 जो रुपया था रूप गोस्वामी ने रखा था, सनातन गोस्वामी ने उसको बुलाया, बनिए को उसे भेंट करके कहा जैसे भाई हमको कुछ पैसे, वो दे दिया। उस पैसे में 5,000 सोने की मुद्राएं उन्हें जेलर के पास में रखा। देखो तुमको मैंने नौकरी दी है, कहा तुम मेरा ऋणी है, ठीक है मैं, किंतु बादशाह से डरता हूं, यदि वो हमारा और हमारे वंश को सबको वो कत्ल कर दे तो, इसलिए मैं डरता भाई, मैं नहीं कुछ करता, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई मैं मक्का में शरीफ मैं जाऊंगा और मैं दरवेश होकर के जाऊं, दरवेश माने उन लोगों का जैसे हमारा सन्यासी, दरवेश बन करके जाऊंगा, इस देश में रहूंगा नहीं, मक्का में सीधा जाऊंगा। इसमें तुम यदि हमारी सहायता करेगा तो तुमको भी खुदा तुम्हारी कल्याण करेगा। देखो 5,000 देने पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो 10,000 सोने की मुद्रा, 10,000 तो ये 10 जीवन में भी नहीं कमा सकता। देख करके मुख से पानी गिरने लग गया और कहा अच्छी बात है तुमको छोड़ देता, तो ये बतलाइए मैं बादशाह को क्या कहूंगा? अरे बादशाह को सीधी बात कहना, जैसे उसको टट्टी लगी थी, हमारे सिपाही लोग उसको टट्टी कराने गंगा के किनारे गए और वहीं से कूद करके गया और मर गया, सीधी बात ये कहा। और हैंड कम में हाथ में हथकड़ी बेड़ी थी, उसी समय कूद गया, और वो जाएगा कहां, वहां पर तो मर ही गया होगा, ये कहा। बहुत अच्छा, ऐसे ही कर दिया, कह दिया वो। और सनातन गोस्वामी चले गए वृंदावन जा रहे हैं, रास्ते में कुछ डकैत मिले, उनके पास में ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने कहा जी इसके पास में कुछ संपत्ति है। उसने क्या किया, रात का समय कभी जंगल कहीं देखा नहीं जाए, इतने में लालटेन लेते हुए प्रकाश लेते हुए दो आदमी आए, बड़े सज्जन दिख पड़े। महात्मा जी आप कहां जा रहे हैं, अब दाढ़ी ओढ़ी बढ़ गई, कहां जा रहे हैं हमारा? मैं भाई भाई मक्का जा रहा हूं, मक्का शरीफ, हमको थोड़ा सा जंगल से पार करा। बहुत अच्छा, चलिए रात में यहीं पर हमारे पास में विश्राम कीजिए, छोड़िए हमारी भजन कुटी है, वहीं पर रहिएगा, खाएंगे पिएंगे, सवेरे चले जाएंगे। तो ठीक है चलो। वो जहां पर डकैतों का सरदार था वहां ले गया, उन्होंने देखा इसके पास में 7 सोने की मोहरे हैं, 8 मोहरे हैं, रात में जब ये खिला पिला करके सुला देंगे तब काट लेंगे और ले लेंगे, ये सोच रखा था। सनातन गोस्वामी गए तो देखा कि बड़ा आदर कर रहा है, भाई क्यों आदर कर रहा है, वो तो थे प्रधानमंत्री, क्यों आदर कर रहा है, कुछ जरूर स्वार्थ है, नहीं तो ये आदर नहीं करेंगे। कुछ स्वार्थ रहने से ना मैया से भी अधिक जो प्रीति करता है वो डाइन है, उसके अंदर में कुछ बात है, मैया से प्रेम अधिक नहीं होता, किंतु यदि कोई करता है तो डाइन है। उसी प्रकार से जो बहुत आदर कर रहे हैं, समझो कि इसके अंदर में कुछ बात है, वो कुछ हमसे रुपया खिसकाना चाहता है, और रुपया खिसका लेगा तो फिर हमको हटा देगा, भगा देगा, जैसे दूध से मक्खी को निकालते हैं, तो है इसका स्वार्थ। उन्होंने कहा अपने नौकर को, उनके साथ में एक नौकर था, ईशान तेरे पास में कुछ है तो हमने 8 सोने की मुद्राएं रखी है असर, अच्छा वो दे दो। तो उसने दे दिया वो असर फी लेकर के, हाँ चित्त इधर लाइए, आइए बैठे। और वो सोने के असर फिर उसे ले लिया सनातन गोस्वामी ने, और लेकर के उसका जो सरदार था डकैतों का उसके पास लेकर के गए, बोले भैया हमारे पास में ये था, मैं चाहता हूं ये आप रख लें। क्यों? अरे ये हमारे जीवन का काल है, मैं जानता हूं। वो हंसने लगा, हंस करके आज देखो भगवान की बड़ी कृपा, मुझे हत्या से बचा दिया, आज रात को तुम्हें काट करके और ये मैं ले लेता, दो की हत्या करता, तो आज तुम लोग दोनों बच गए और मैं भी बच गया पाप से, अच्छा हुआ दे दिया। किंतु एक बात कहता हूं, तुम्हारे नौकर के पास में एक और है, अब मुझे जरूरत नहीं है, तुमको मैं सबेरे अभी पार कर देता हूं। ठीक, बस उसी समय में उनको पार कर दिया, रात ही रात में जंगल से पार हो गए। जब जंगल से पार हो गए तो उन्होंने ईशान को बुलाया, बेटा तुम्हारी बहुत सेवा की, तुम्हारे पास में एक और कुछ है? तो हाँ, आपकी सेवा के लिए हमने आठ रखे थे, तो आपने सात तो लेकर के दे दिया और एक मैंने रखा है आपकी सेवा के लिए। देखो तुम अर्थ का मोह नहीं छोड़ सकता, तुम जाओ संसार, यह सर्फी लेते जाओ और भी तुम कमाना खाओ, तुम अभी भजन के योग्य नहीं है। जिसको अर्थ के प्रति लालसा है ऐसी, जो अर्थ से ही सेवा होगी किसी की भगवान की, ये गलत बात, इसलिए तुम लौट जाओ, अभी तुम घर में रह करके जो कुछ करो। बहुत रोने गिरना लगा, उसके बाद एकदम ने छोड़ करके चले गए। रास्ते में उनको उनके भगनी पति मिले, वो गए थे घोड़ा खरीदने के लिए बादशाह का, लाखों रुपए लेकर। उन्होंने देखा कि सारी ये तो हमारे ये सनातन जी आ रहा है, अच्छा सनातन गोस्वामी की बहन की शादी उनसे हुई थी, श्रीकांत उनका। उन्होंने देखा ये तो कपड़े फटे हुए हैं, मैले कुचेले हो गए हैं, कुछ नहीं, ये सनातन गोस्वामी है, ऐसा हो गया सनातन, साकर मल्लिक नाम, साकर मल्लिक जी। बस उतर करके आया अपने दो तल्ले अपने बिल्डिंग से आया और कहा यार आपकी ये दशा क्यों? भैया मैं किसी से मत कहना, मैं वृंदावन जा रहा हूं, वहां पर चैतन्य महाप्रभु जी आए, तो आपको सर्दी लगेगी, अब तो सर्दी का समय आ रहा है। उन्होंने अपना शाल लेकर के बहुत सुंदर शाल उनको दे दिया, ले लिया, वाराणसी पहुंचे। चैतन्य महाप्रभु जी रूप गोस्वामी को रूप वहां पर प्रयाग में शिक्षा देकर के वृंदावन से आ रहे थे, जा रहे थे पुरी में, सनातन गोस्वामी मिले। सनातन गोस्वामी जी मिले अभी नहीं, दरवाजे पर खड़े हैं, पूछ करके पता लिए कोई सन्यासी बंगाली आया है। लोगों ने हाँ हाँ वहां पर है, दशरथ स्वामी घाट पर इस घर में है, वहीं पर चुपचाप आकर के खड़े। महाप्रभु जी ने कहा जो जिनके घर में ठहरे थे चंद्रशेखर आचार्य से, देखो तो दरवाजे पर कोई संत आए हैं महात्मा, जाकर के देखो, और है तो उन्हें ले आओ। वो गए, देखा जी मुसलमान फकीर खड़ा है, वो भी दाढ़ी टाढ़ी और मैले कुचैले वस्त्र से। नहीं कोई तो महात्मा तो नहीं, वहां पर कोई नहीं है, अरे देखो जो कोई हो खड़ा उसी को ले आओ। तो जब उनको लेकर के भीतर में घुसे, महाप्रभु जी वहीं से दौड़े और दौड़ करके रोते हुए उनसे गले में लिपट गए। सनातन गोस्वामी ये क्या किया, क्या मैं मुसलमान हो गया, मैंने मुसलमानों का अन्न खाया, उनकी नौकरी की, अपना हिंदू धर्म इत्यादि सब कुछ छोड़ दिया और तुम हमको पकड़ रहे हो। महाप्रभु मैं अपने को पवित्र होने के लिए तुमको पकड़ रहा हूं, तुम्हारे जैसे तुम हमसे मत छिपाओ, तुम्हारे अंदर में ऐसा कृष्ण प्रेम है जो विश्व ब्रह्मांड को बना देगा, मुक्त कर देगा, कृष्ण प्रेम से भर देगा, इसलिए मैं पवित्र होने के लिए तुम्हें स्पर्श कर रहा हूं। दोनों एकदम रोने लगे, महाप्रभु जी ऊपर नीचे उनको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी से बोले तुम जाओ केस कटा करके गंगा में स्नान करके आओ। तो वो गए, महाप्रभु जी हमारे ऊपर में ऐसे ऐसे क्यों देख रहे थे? देखा जे फटे हुए कपड़े और उसके ऊपर में सुंदर शाल 2-4 हजार रुपए का, ये क्यों? बस अपना शाल एक दरिद्र आदमी को देकर के उसके फटी हुई गुदड़ी को और लेकर के आए। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, अच्छा किया, ये बेशकीमती चीज को भी तुमने हटा दिया, अब मोह माया ममता तुम्हारी कहीं नहीं है, अब इस प्योर हृदय को मैं कृष्ण के चरणों में तुम्हें समर्पित करा दूंगा। सनातन गोस्वामी ने पूछा, के मोरे के आमी कह रहे मोने जा रहे तापत्र यहां नहीं जानी के मने ही कहा, मैं कौन हूं, क्यों ये संसार के दुख जो है हमें आते हैं, बुढ़ापा आती है, दुख होता है, रोग होता है, तिताप होता है, अंत में शरीर को छोड़ करके हम न जाने कहां चला जाते हैं, ये क्यों और कैसे मैं जीवन में सुखी हो सकता हूं सदा के लिए। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न होकर के उनका उत्तर देने लगे, मैं कौन हूं, संसार का कोई नहीं, ये किराए पर हमने किराया रखा है, भगवान ने एक जानबूझ करके किराया पर दे उठा रखा, मैं नहीं जानता कि ये किराए पर है ना कैसे। आज सुनते हैं जब यहां पर अमेरिका में सब बैंक से लोन में ये सब बने होते हैं अधिकांश, और सभी लोग ऐसे धनी दिखते हैं किंतु सब लोन में भरे रहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कृष्ण का इटर्नल दास, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम समझ नहीं रहे, हम समझते हैं कि हमारा ये नाम है, मेरा नाम है सुशील अग्रवाल, मैं बिमला जी का पति हूं, हमारे दो बेटे हैं, हमारा ये मकान है, हमारे पांच कार है और इतनी बड़ी भारी शॉप है और बिजनेस इतना बड़ा है, ये समझते हैं। पहले भी यही थे, जब शादी नहीं है तो आप किसके पति थे, और शादी होने के पहले आपके दो लड़के कहां थे, फिर अंत में क्या होगा, नहीं समझते कि हम कृष्ण के ही पुत्र हैं, कृष्ण के दास हैं, हम उन्हें भूल करके इस जगत में आए हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, ये कपास ओढ़ने लग गए, पिछले सर के गुजराती लोग जानते होंगे कपास, हम अच्छे थे वहां, कुछ धर्म कर्म था, कुछ भगवान की कथाएं बिना किसी पैसे के आ जाती थी, वृंदावन निकट था, ऐसे देश में आई यहां से लौट करके जा करके वृंदावन में पहुंचना बड़ा भारी मुश्किल का काम, बहुत मुश्किल काम, इनके पास में काफी पैसे हैं, उनको भी सबको लेकर के जाना, यहां का कारोबार छोड़ देना, ये तो बड़ा भारी मुश्किल है, किंतु एक न एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा, एक सेकंड भी ये किराया पर जो उठा रखा है मालिक एक मिनट की देर नहीं करेगा, अभी चलना है, एक मिनट ठहरेगा नहीं ले लेगा, तो हम हैं कौन, ये तो शरीर तो हमारा ये किराए पर है मकान, ये कपड़े के समान है, गीता में इस चीज को बतलाया, इसलिए इसको छोड़ना है जरूर, कहां जाना है ये भी कोई पता नहीं, कब नारी मृत्यु आ जाए कोई ठीक नहीं, परीक्षित महाराज जी के लिए 7 दिन का गारंटी था, जो 7 दिन के अंदर में मृत्यु नहीं आएगी, तुम्हारे लिए कोई गारंटी है, कोई गारंटी नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए अभी से भगवान का भजन करके, उस प्रभु बड़े बड़े दयालु हैं, उनका भजन करके आनंदमय हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सर्वस्व सफल हो जाएगा। भजन करने में बड़ा कष्ट है, क्या कष्ट है भाई, अरे दिन में कभी भी उनको स्मरण कर लो, मुसलमान लोग तो 50 बार उठते बैठते दंडक बैठक करते हैं ना, ऐसे करते हैं नमाज पढ़ने में, तुमको तो भी नहीं करना है, क्या करना है भाई बतलाइए, तो कुछ नहीं करना है, तुम जहां है जैसे है वहीं से हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, बस कर दिन रात का कोई प्रश्न नहीं है, तुमने स्नान किया है कि नहीं ये भी पूछने की जरूरत नहीं है, तू बूढ़ा हो गया कि नौजवान है ये भी पूछने की जरूरत नहीं, तू मुसलमान है कि हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि ईसाई है कि क्या है, मैं गरीब हूं कि धनी ये भी पूछने की जरूरत नहीं है, उसमें पैसा भी नहीं लगता, कोई एनर्जी भी नहीं लगती, हमारे पास भाई समय नहीं है। अच्छा टट्टी करने समय क्या करता है, पेशाब करता है तो क्या करता है, बिजनेस करता है ना, टाइप वो कंप्यूटर चलाता है पैखाना करते समय में, अच्छा वही समय दे दो, अरे वो समय कैसे दो, कहते हाँ हाँ वो देने से होगा, हनुमान जी एक बार उनकी कथा है, एक तेली था उसको समय नहीं मिलता था भगवान का भजन करने, दिन भर तो हाट करता हुआ वो कुल्हू चलाता, कुल्हू जानते हैं बैल को चला करके तेल निकालने के लिए, तो दिन भर वो करता था, रात में जहां छोड़ा इसको बद नींद सो जाता था। नारद जी मिले, बोले जैसे, अरे तू जीवन बर्बाद कर दिया प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे समय नहीं मिलता है, अरे भगवान का नाम तो जप ही कभी करो, मैं कैसे करूं, जब तक मुझे होश रहता है तब तक तो मैं कलू चलाता हूं, हमारे जीवन का निर्वाह नहीं, बीवी बच्चे को कौन देखेगा। तो ठीक है, तू पैखाना समय कुछ करता है तो नहीं तो, लोटा ले लेना, जंगल में चला जाना, और वहीं पर जाते समय में या पैखाना करते समय में राम राम कह लेना, बस राम राम एक दो बार कर ले, ठीक है ऐसा चलेगा तो जरूर चलेगा। वो टट्टी करने गया, उस समय में नारद की बात आई, ठीक करते हैं, अच्छा इसी समय राम राम एक दो बार कहा, ऐसा नियम है कि जहां राम नाम होगा हनुमान जी जरूर जाएंगे, एक साथ में लाख जगह यदि होगा तो लाख जगह जाएंगे, बस वहां हनुमान जी पहुंच गए। देखा जी ये तिली टट्टी कर रहा, पवित्र अवस्था में भगवान का नाम ले रहा, ये बड़ा बदमाश है, तो भगवान का नाम भी अपवित्र कर दिया। उन्होंने देखा नहीं, जिस लात से रावण को मारा था एक लात उसे मारा, रावण गिर गया, मट्टी मुख में ले लिया, होश नहीं रहा उसको बहुत समय तक। कुंभकर्ण को मारा जो रावण से भी बलवान, और वो भी गिर गया, और एक लात मारी उन्होंने, वो तेरी कुछ नहीं हुआ, वो राम राम करता रहा। हनुमान जी कहा जी ये बेटा बदमाश क्या कर रहा, देखते हैं अभी भी कर रहा, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, अच्छा कुछ नहीं हुआ। वहां से सोचते क्यों नहीं हुआ, हमारा लात तो ऐसा साधारण नहीं है। शाम हो गई तो गए अपने प्रभु के पास में, अयोध्या में राम के पास में, रामचंद्र जी घर के अंदर में राजभवन में सो रहे थे, आराम कर रहे थे। आज रामचंद्र जी ऊह कर रहे, हनुमान ने जी बाहर से आवाज सुनी, कहा जी आज प्रभु को क्या हो गया। प्रभु जी के पास में पहुंच करके हाथ जोड़ करके बोले जी प्रभु आपको क्या हो गया, देखो तो तुमने ही ये किया और हमसे पूछ रहा है क्या हुआ, आज तुमने हमको ऐसी जोर से लात मारी कि हमारी रीढ़ फसली एक हो गई, मैं उठ नहीं सकता। प्रभु मैंने कब आपको मारा, तो तुमने नहीं मारा, जानता है कि हमारा नाम और मैं एक हूं, कोई अंतर नहीं, बल्कि नाम और दयालु है, कोमल है, करोड़ों लोगों पर दया करने वाले हैं, तो जिस समय जो कोई नाम करता है मैं उसमें प्रवेश कर जाता हूं, सारी शक्ति उसमें संचित कर देता हूं। तो जिस समय वो उसने टट्टी करते समय राम राम कहा, मैं उसके अंदर नहीं प्रवेश कर गया, और तुमने जो लात मारी वो लात उस पर नहीं लगी, वो हमारे पर, हमारी तो भाई ये कमर टूट गई। मैं आज से मैं कान पकड़ता हूं, आप क्षमा कीजिए, आज से मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। तो देखो उसमें भी यदि नाम किया जाए कोई हर्ज नहीं, स्नान करो न करो कोई बात नहीं, खा लिया है कि नहीं खा लिया है तो अभी नाम कर सकते हो, ऐसा सरल सहज नाम 10 बार नहीं कर सकते, एक बार भी कर लो तो भी कर। अजामिल ने तो एक बार नारायण नाम किया अपने बेटे के लिए, वही भगवान के निमित्त उसका कल्याण, इसलिए विश्वास रखो। आप कहते हैं संसार में आ सकते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है करो, किंतु उसमें भगवान के नाम करने में ये क्या तुम्हारा जाता है। मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, हिंदू है, हिंदू में भी बहुत से लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कोई शिव की उपासना करता है, कोई हनुमान की करता है, कोई बजरंग जी की करता है, कोई गणेश जी की, कोई सरस्वती की, काली, कोई हर्ज नहीं, जो कुछ है करो, किंतु कृष्ण नाम तो कर सकता है, हरे कृष्ण, और जो बाकी होगा वो पीछे करा लेंगे वो ही नाम। 1 घंटा तो बेसी हो गया। इस तरह से भगवान का नाम करो, ये सनातन गोस्वामी का, उनकी बहुत सी शिक्षाएं मैं कहना चाहता था किंतु समय अब के अभाव से मैं नहीं कर सकता। बड़ी सुंदर उनका जीवन चरित्र है, कैसे भजन में हम उन्नत कर सकते हैं उनके आदर्श से हम सीख सकते हैं। मैं कुछ कहने आया था कुछ और उनकी गूढ़ उपदेशों को, किंतु मैं उसका बांधते समय ही ये भूमिका बांधने में ही हमारा समय चला गया और इसी में चला गया, तो मैंने जीवन का कर्तव्य है भगवान का, वो भगवान कौन है, कृष्ण ही है, ये समझिए, राम वही कृष्ण ही है, परशुराम वही, एक कृष्ण का भजन करने से राम का भजन, सब देवताओं का भजन करना, माता पिता की सेवा करना, पति की सेवा करना, सब कुछ उसी के अंतर्गत में आ जाता है। उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का भजन करें। यदि सचमुच में कल्याण चाहते, सुख शांति चाहते, इसके अतिरिक्त कल्याण नहीं है। गौर ब्रह्मान आप एक कीर्तन कीजिए।
कमल भया अतीब मनोहर नेत्र कमल भया अतीब मनोहर अंतरयामी प्रभु परमेश्वर अंतरयामी प्रभु परमेश्वर